ओम शांति। हम आदरणीय शुक्ला बहन का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल ही शांतिवन में युगलों की बत्ती कराने आए और मुन्नी बहन ने कहा कि मैंने बात किया है, क्योंकि एक विषय खाली हो रहा था कि हमने कहा, तो मुन्नी बहन ने बताया कि शुक्ला बहन आ रही हैं, तो मैं उनसे बात करके और फोन करती। तो कल मुन्नी बहन का सुबह को फोन था कि शुक्ला बहन आएंगी, तो हमें भी खुशी हुई, ताकि अभी अभी हम मिले थे बॉम्बे में। शुक्ला दीदी बॉम्बे में बोरीवली जोन में भी बत्तियां कराने के लिए आए थे, तो वहां पर भी बत्तियों का लाभ मिला था और यहाँ फिर मिलना हुआ है। दूसरी बात, इनके परिचय में आप सबको बता दें कि साकार बाबा और मम्मा की पालना लिए हुए हैं, उस समय के हैं। आप सोचो कि कितने पुराने पुराने आदि रतन हम सबको क्लास कराने के लिए आ रहे हैं। साथ साथ हरिनगर एवं फरीदाबाद के आसपास के सेवा केंद्रों की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और सिक्योरिटी विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सिक्योरिटी शब्द के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि दिल्ली में तिहाड़ जेल फेमस है ना, है? सब जानते हैं ना, तिहाड़ जेल में अपना सेवा केंद्र चलाना एक बहुत बड़ी अपने आप में सेवा है। तो दीदी जी के नेतृत्व में तिहाड़ जेल में भी सेवा केंद्र चल रहा है। काफी कैदी भाई बहने रोज बाबा की मुरली को सुनते हैं, तो ये अपने आप में सेवा है ना। तो इतनी बड़ी सेवा को दीदी जी कर रहे हैं। दीदी जी में भी मैंने देखा कि जो हमारे साथ दो तीन दिन थे, जिस समय जो भी बात कही तो उस बात को हाँ जी, और साथ साथ ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि हम छोटे हैं आप बड़े थे, जबकि काफी अंतर है ज्ञान का भी उम्र का भी दोनों रीति से, लेकिन दोनों अंतर होते हुए भी इन्होंने ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि हम अंतर में हैं। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम उनके साथ ही हैं, एक साथ ही समझ करके लेन देन करना और सही गाइडेंस देना ये दो तीन दिन के अंदर, क्योंकि बचपन से भले मैं जानती थी परंतु इतना करीब इतना रीति से हम नहीं आए थे, ये पहली बार होगा कि हमारे साथ तीन चार दिन कंटिन्यू रहे। तो वो मैंने देखा विशेषता कि कितना प्यार से, चाहे छोटी छोटी बहनें थी उन्हों को भी वो बड़े प्यार से उनके प्रश्नों को समझ करके उस रीति से उन्हें प्रेरणा देना, गाइडेंस देना, उनको भी फील कराना कि हम सब अपने एक ही परिवार के हैं, ये विशेषता दीदी में हमने देखी। तो ऐसी विशेष दीदी हम सभी के बीच में है, तो मैं दीदी जी से कहूंगी कि आप हम सभी को ये बात जरूर बताएं कि लौकिक में अलौकिकता, बाबा कई बार कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, तो वो कैसे करें, वो आप अपने अनुभव और ज्ञान रत्नों के आधार से हमें लाभान्वित करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सात बार ओम शांति करेंगे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा एक्सरसाइज करने का है। ऐसे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण बाप दादा ने हम बच्चों के आगे एक लक्ष्य दिया है, जीवन मुक्त बनने का। जीवन में रहते हुए सब प्रकार के विकारों से, विकृतियों से, विकर्मों से, बुरी बुरी आदतों से मुक्त होने का, है ना? तभी तो जीवन मुक्त बन सकेंगे ना। लक्ष्य हमारा बहुत अच्छा है। लक्ष्य में हमें सदैव आंख बंद करो तो लक्ष्मी नारायण नजर आते, आते हैं, आते हैं, है ना, क्योंकि प्राण बाप दादा की हम बच्चों के प्रति ये आश है, सिर्फ आश नहीं अच्छी तरह से शिक्षा है कि इन दो नेत्रों के अंदर एक में बाबा एक में लक्ष्मी नारायण को बसा लो, ठीक है। अब हम सबका लक्ष्य है कि हमें जीवन मुक्त रहना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन के अंदर आने वाली सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त होना है। तो क्या हम लक्ष्य के अनुसार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं? हम सब स्टूडेंट्स हैं और हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, और हम सब क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण या उनके वंशावली में आएंगे, ऐसे ना है? अब वो बनने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, हमारी वृत्तियों में वो बातें आती जा रही है। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण की हम महिमा गाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप सुला कला संपूर्ण हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, आप संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप संपूर्ण अहिंसक है। ये महिमा गाते हैं। अब आइए, हम सबका लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य के अनुकूल हम अपने आप को, अपने आप की स्टडी करें। क्योंकि जब तक अपने आप की हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं, अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो स्टडी में हम अपने आप को क्या देखते हैं, हमारे जीवन की धारणाएं क्या हैं? ठीक है, हमने बाबा की पहली आज्ञा योगी बनो पवित्र बनो उसको हमने सिर माथे रखा, जीवन की धारणा बनाया, तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम समय प्रति समय आते रहते हैं। परंतु यही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ बाबा ने हमें ये भी लक्ष्य दिया कि तुमको सत्व प्रधान बनना है, तुम्हें अपनी वृत्तियों को इस तरह से बनाना है जैसे सत्यों के अंदर एक घाट पर शेर और गाय जल पीते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत उनकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, है? ऐसे ही हमें परिवार में रहते हुए, समाज के अंदर रहते हुए अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरी मनोवृत्ति इस तरह से बन गई है, मेरे द्वारा निर्मल धारा बह रही है, सकारात्मक चिंतन की धारा बह रही है, शीतलता का प्रवाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। पर वो तभी होगा जब हम परिवार में रहते हुए घर को घर नहीं समझेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो अपने घर को अब बाबा का घर समझते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने घर को अपना घर समझते हैं। तो जो भाई बहन बाबा के घर को अपना घर समझते, वो ये भी समझते कि बाबा का घर और मेरे घर के अंदर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा के घर में जब आते हैं, समझो अभी आज हम बहुत दिन के बाद पांडव भवन में आए, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की पवित्रता, यहाँ का वातावरण, यहाँ का तपस्वी वाइब्रेशन अपनी प्रकार का है, है? तभी तो हमारा मन करता है कि हम जाएं, 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 ठीक है। बहुत दिन के बाद आने के बाद भी लगता है कि एक एक कोना बहुत स्वच्छ है, एक एक कोना बहुत शुद्ध वाइब्रेशन दे रहा है, एक एक कोने से ये प्रवाह आ रहा है कि यहाँ कोई तपस्वी रहते हैं, योगी रहते हैं, ऐसा है, है ना? मैं 5-10-15 मिनट पहले आई तो मैं घूम के आई, थोड़ा सा ही घूमा, थोड़े से स्थान पर घूमा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो कभी कभी क्या लाता, पांडव भवन में कोई रहता ही नहीं है बड़ा। पांडव भवन का पता नहीं कैसा अभी वातावरण होगा। पांडव भवन तो बाबा की असली तपस्या भूमि तो पांडव भवन है ना? और हम सब का भी जीवन का आरंभ इसी धरा से हुआ है। अब पता नहीं कैसा होगा, है ना? परंतु फिर भी यहाँ आते ही यहाँ के वाइब्रेशंस ने, यहाँ के वातावरण ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया कि जहां से तुम पैदा हुए, जहां से तुम्हारे बाप दादा ने बैठ करके तुम्हें सींचा, वो स्थान एज इट इज, उसके अंदर कोई अंतर नहीं, तो अच्छा लगेगा ना? ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं बाबा के कदमों में मेरा कदम है, बाबा के चढ़ते कदमों में मेरे चढ़ते कदम है, मैं बाबा को ही फॉलो करती हूँ, बाबा को ही फॉलो करता हूँ, तो क्या मेरे, मैं जहां रहता हूं वहां का वातावरण क्या है? वहां के वातावरण और इस वातावरण में क्या अंतर दिखाई देता है? यहां अलौकिकता बरसती है। मैं भी भगवान का पुत्र हूं, ब्रह्म कुमारी हूं, देवता बनना मेरा लक्ष्य है, फरिश्ता मुझे बीच में बनना ही है, तो मैं जिस धरा पर रहती हूं, यहां तो फॉर द टाइम बीइंग आई, पर जिस धरा पर मैं रहता हूं, रहती हूं, वहां का वातावरण क्या है? बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनको लगता है कि ये घर अब घर नहीं है, ये घर सेवा का स्थान है। यहां का वातावरण इसलिए उज्जवल रहा क्योंकि सबकी बुद्धि के अंदर, जो भी यहाँ के निवासी हैं, उनकी बुद्धि के अंदर ये रहा कि ये सेवा स्थान है, ये बाबा ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, ये अनेक अनेक दादियों दीदियों की कर्म भूमि है, हा? तो इसको हमें चरित्र भूमि है, इसको हमें एज इट इज रखना है ताकि लोग आए और उनकी यादें, वो अभी नहीं है परंतु उनकी यादें उन तक पहुंचे, क्योंकि जिन्होंने इतना त्याग किया, जिन्होंने इतना तप किया, जिन्होंने एक बल और भरोसे पर अपने जीवन को खड़ा करके इतना बड़ा संस्थान बना दिया। नहीं तो एक चिंगारी तो सिंध हैदराबाद में एक चिंगारी उठी थी ना, पर वो चिंगारी आज समस्त विश्व के अंदर फैल गई। समस्त विश्व के अंदर आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र है। वो कैसे हो गए, किनके आधार से हो गए? जिन बच्चों ने बाबा को फॉलो किया, जिन बच्चों ने अपने जीवन में अलौकिकता लाई, दिव्यता लाई, पवित्रता लाई, सत्यता लाई, रूहानियत लाई, क्योंकि जब तक सत्यता और पवित्रता नहीं तब तक दिव्यता नहीं आ सकती है। तो जिन्होंने ये अपने जीवन के अंदर लाया और बाबा के कदमों पे अपने कदम रखे, वो बच्चे जब देश विदेश में गए तो बाबा का नाम रोशन हुआ और अनेक बच्चे बाबा के तैयार हो गए। मुझे ये सुनाते हुए विवेकानंद जी की याद आने लगी, नहीं तो कुछ सोच के नहीं आई थी, पता नहीं कहां से टपक पड़ी ना। विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो लोगों ने पूछा कि आपके लोग कृष्ण के पीछे क्यों भागते हैं, उसमें क्या ऐसा आकर्षण था भारतीय लोगों के, माना भारतीय लोग कृष्ण के पीछे क्यों भागते हैं, क्या ऐसा आकर्षण था? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं कल उत्तर दूंगा, इसका आज नहीं। दूसरे दिन उन्होंने भाई और बहनों करके, क्योंकि वहां तो बहनों और भाई बोलने वाला कोई है नहीं, ना? और वो विद रिस्पेक्ट भाई और बहनों करके भाषण किया, और भाषण भी इतना अच्छा किया, और भाषण करते करते वो भागने लगे। वो ब्रह्मचारी थे, योग्य थे ना, तो बहुत तेज भागने लगे। लोग भी उनके पीछे, विवेकानंद जी ठहरो, विवेकानंद जी ठहरो, विवेकानंद जी ठहरो, परंतु विवेकानंद जी उनके हाथ ही नहीं आ रहे थे। वो भागते चले गए, भागते चले गए। जब लोग बेचारे भागते भागते बहुत हाफ गए, थक गए, तब विवेकानंद जी ने कहा अब ठहर जाता हूं। तो कहा क्या मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तो कहा आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, आपके विचार बड़े सुंदर थे, आपके हर चीज में बहुत दिव्यता थी, इसलिए हम आपके पीछे भाग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम बच्चों का जीवन इतना उज्जवल, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना दिव्य होना चाहिए। हमारा रहन सहन भी इतना आम लोगों से बहुत विचित्र होना चाहिए, मतलब विचित्र ना शब्द कह के उसके अंदर दिव्यता भरी हुई होनी चाहिए, तभी, और हमारी वाणी के अंदर भी जौहर होना चाहिए, हमारे कर्मों में दिव्यता होनी चाहिए, हमारा व्यवहार में शिष्टाचार होना चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। किसी ने किसी से पूछा संसार का सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक बहुत समझदार व्यक्ति बैठा था, उसने कहा सबसे बड़ा शास्त्र है व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार ही सबसे बड़ा शास्त्र है, श्रेष्ठ व्यवहार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परिवारों में रहते हैं, परिवारों में रहते हुए हमें ये बात अपने आप में नोट करनी है, सेंटर में रहते हुए ये बात हमें अपने आप में नोट करनी है कि क्या हम व्यवहार कुशल हैं, हमारा व्यवहार सभ्य है, हमारी व्यवहारिकता में प्रत्येक मानव को मैं जो भी आए उसको सुख देती हूं, हमारी दृष्टि में वो रूहानियत है जो जो भी आए उसको एक रास्ता मिले मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्तियों से, ऐसा है? अगर ऐसा नहीं तो अलौकिकता कहाँ है? अलौकिकता का मतलब क्या है? अलौकिकता का मतलब ये नहीं है कि चेहरे पर हम कोई गुलाबी पेंट लगा ले, या अलौकिकता का मतलब ये नहीं है कि हम काजल लगा ले, अलौकिकता का मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी क्रीम चेहरे पर या कपड़ों पर शाइनिंग कपड़े पहन ले, उसका नाम कोई अलौकिकता नहीं है। अलौकिकता एक ऐसी चीज है, दिव्यता एक ऐसी चीज है जो वो आभा जो होती है। मैं बचपन में भागवत पढ़ने का शौक होता था मेरे को, और पहले जमाने में जो शास्त्र होते थे उसमें जो मूर्ति चित्र बनाए जाते थे, पता नहीं कौन सा कारीगर बैठ के बनाता था उन चित्रों को, उन चित्रों के अंदर वो क्या है, वो कैसी मनोस्थिति वाले हैं, सारा अंग अंग से प्रदर्शित, जैसे गोल्डन रेडिश, इतना सुंदर उनके चित्र दिखाई देते थे, जैसे लगता था कि ये कोई दिव्य पर्सनैलिटी है ना। जब मैं उन चित्रों को देखती तो मुझे लगता हम कब ऐसे बन सकते हैं, हम तो बन ही नहीं सकते इस तरह के, क्योंकि हमारा तो रहन सहन खान पान सब ऐसा है। और एक बात बताते हुए खुशी होती है मेरे को, जब मैं उनके चित्रों को स्टडी करती थी तो देखती थी जब चित्रों को, तो मुझे लगता था मुझे भी ऐसा बनना है। तो बचपन से ही लेकर के आज मैं आपको एक खुशी की बात सुनाती हूँ कि हमने कभी प्याज नहीं खाया। आज भी मेरे कोई कोई कह देना तुम मसूर की दाल खा ले, मैं कहती नहीं मेरे को नहीं खानी है। मैं एक बात बताती हूँ, आज भी वो पता नहीं वो क्या होता है। कल एक बहन कह रही थी, दीदी वो तो बहुत है। क्या बोल रही थी तू? कटहल, कटहल खा लो। मैंने कहा मैं तो उसको छू भी नहीं सकती ना। क्यों क्यों आप सोचिए क्यों? क्योंकि अपना एक लक्ष्य था कि मुझे अपने आप को, अपने तन और मन दोनों को ही प्योर बनाना है, सत्वगुणी बनाना है, है ना। तो जब यहाँ आए तो यहाँ भी अंदोष अंगदोष से बचाया गया हम लोगों को। ठीक है, आपको मुझे सुनाते हुए बहुत हंसी भी आती है कभी कभी। किस प्रकार से आप कहेंगे आप दीदी किस जंगल में पली हो या कहाँ? मैं तो बहुत अच्छे परिवार में पली हूँ और बहुत अच्छे वातावरण में पली हूँ, मतलब आज तक कभी पिक्चर नहीं देखा मैंने, है ना। शुरू से ही पालना हम लोगों को ऐसी मिली है। आज जब हम ब्रह्म कुमार कुमारी बने तो हमारा देह क्या है? हमें जीवन मुक्त बनना है। कहते हैं मुक्त बनो विमुक्त बनो तब जीवन मुक्त बनेंगे। अमुक्त सब बातों से मुक्त होना है, सब प्रकार के लगाव से मुक्त होना है, सब प्रकार के झुकाव से मुक्त होना है, सब प्रकार के टकराव से मुक्त होना है, सब प्रकार की वैर विरोध वैमनस्य की भावनाओं से मुक्त होना है, है ना। परंतु वो तभी हो पाएंगे जब मेरी बुद्धि के अंदर एक अलौकिक चित्र सदा बसता रहेगा कि मुझे क्या बनना है। एक ऐसी संपन्न मूरत अपने आप को तैयार करना है जो संपन्न भी हो, जो सत्व प्रदान भी हो, संपन्न भी हो, समृद्ध भी हो, शक्तिशाली भी हो, है ना, सशक्त भी हो। ऐसी मूर्त मुझे अपने आप को बनानी है। परंतु वो मूर्ति कैसे तैयार होगी? साधारण जीवन जीने से नहीं होगी। आए बाबा का क्लास किया फिर वैसे के वैसे, है ना, उससे नहीं होगा। वो तो एक आधार है हमारा, है ना। वो तो एक वॉशिंग मशीन, मुरली एक वॉशिंग मशीन है की तरह है। जैसे कपड़े को वॉश किया जाता है वैसे मुरली सुनी, थोड़ी सी मैल उतरी, बाकी जो जन्म जन्मांतर से हम सब के ऊपर विकर्मों की मैल चरी हुई है वो कैसे उतरेगी? हाँ, वो कैसे उतरेगी? जब हमारी बुद्धि के अंदर होगा कि मेरा जीवन, मेरी धारणाएं, मेरे विचार, मेरे कर्म में अलौकिकता आम आदमी से हट करके हो, है ना? वो वाच करना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो बाबा कहते तुम ग्रेट पर्सनैलिटी हो, शिव बाबा सबसे ऊंचा, उसके बच्चे हम, ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बच्चे हम, और उसके हम ग्रेट और ग्रैंड सन है। ठीक है, ग्रैंड सन है, भगवान के ग्रैंड सन है। हा? आज कोई मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, पहले उसकी शक्ल सूरत क्या होगी? परंतु जब वो मिनिस्ट्री में आ जाता है, अब मोदी को ही देख लीजिए, कुछ दिन पहले उसकी शक्ल सूरत क्या थी और आज उसके चेहरे में थोड़ी चमक आती जा रही है। चमक तो थी पहले भी, परंतु आज दूसरा रूप आपको दिखाई देगा। देगा, दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी समृद्धि में ये आ गया कि मैं अभी देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे उसी सांचे के अंदर चलना है, मुझे अभी बोल भी जो बोलने हैं उसी के अनुकूल बोलने हैं, मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जो मेरा शब्द सारे संसार के अंदर मेरे शब्द के बारे में चर्चा शुरू हो जाए। ठीक है, और आज हम क्या कहते हैं अपने आप को? हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन है। और दूसरे शब्द क्या बोलते हैं? हम नेक्स्ट टू गॉड है, बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन। अब ग्रैंड सन की मनोस्थिति क्या है? चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है, निराशा पड़ी हुई है, उदासी है, पता नहीं किसी ने 50 मन का बोझ रख दिया हुआ है, हम ग्रैंडसन, चमक और धमक है ही नहीं चेहरे में, ना वो आभा है, ना वो रूहानियत है, ना वो दिव्यता है, ना वो ब्रह्मचर्य का ओज है। मैं जब कुमार भाइयों को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये तो कुबरे सुबरे पता नहीं कहाँ से आ गए। वास्तव में हमारे चेहरों के ऊपर तो दूर से ही नजर आना चाहिए कि हम एक योगी आत्मा है, एक ऋषि है हम, अलौकिकता नजर आनी चाहिए, वो दिव्य आभा नजर आनी चाहिए, आंखों में रूहानियत की एकाग्रता की दृष्टि नजर आनी चाहिए, परंतु वो चमक वो धमक नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि हम अपने आप को विशेष पर्सनालिटी नहीं समझते, अपने आप को एक साधारण प्राणी समझते हैं, जिसके कारण हम उन लोगों का बोल चाल व्यवहार कर्म खाना पाना भी, आजकल तो थोड़ा खान पान भी हल्का हो गया, पहले तो इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी किसी की कुदृष्टि पर जाए तो कहीं हम भोजन नहीं करेंगे, ये वाला नहीं खाएंगे, बाबा तो कभी नहीं खाता था, है ना? और आज हम वही ट्रेनों में बैठ के वहां आपस में बैठ के क्या नहीं करते, लोगों की कैसी कैसी दृष्टि उसके अंदर पड़ती है, पड़ती है ना, पड़ती है, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। पहले तो हमारी अपनी मानसिक स्थिति इतनी उज्जवल नहीं है, पहले अपनी मानसिक स्थिति इतनी उज्जवल हो जाए, उस दृष्टि से हम खाना बनाएं, उस वृत्ति से खाना बनाएं, और फिर उन बच्चों को खिलाएं, पति को खिलाएं, तो उसका प्रभाव अलग है। परंतु आज हम सोचते हैं भाई क्या करें, और बोलते ये हैं कि बच्चे नहीं चलते, पति नहीं चलता, फलाना नहीं चलता, टमकाना नहीं चलता। कारण कारण कोई और नहीं है, कारण हम ये हम ही है, क्योंकि हम उस योग युक्त होकर के खाना नहीं बनाते। आज मैं अगर एक सवाल पूछ लूं कि बाबा को भोग लगाकर कौन खाता है, बाबा को भोग, बाबा को भोग लगाने का अभिप्राय मैं और कुछ पूछने वाली हूं। जैसे अपने यज्ञ के अंदर भोजन बनता है, बाबा के अलग बर्तन रखे हुए हैं, उन बर्तनों के अंदर वो भोग डाला जाता है, फिर बाबा के आगे रखा जाता है, बाबा को बुद्धि से स्वीकार कराया जाता है, फिर उसके बाद उस भोजन को सब भोजन में डाल दिया जाता है, ऐसा भोजन को भोग लगा के कौन खाते हैं? बहुत थोड़े है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर थोड़े है ना। क्यों? एक बहन से मैंने पूछा, बहन तुम बाबा को भोग लगाती है भोजन? कहती है क्या करे बहन, नौकरी वाले हैं। हाँ मैं भोग लगा के तो खाती हूँ। मैंने कहा कैसे? कहती है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में एक अलमारी में बाबा का चित्र रखा हुआ है, और मैं क्या करती हूँ, मेरे दूध पीना होता है तो मैं दूध को अपने गिलास में डालती हूँ, खाने को भी जो मुझे दफ्तर में खाना ले जाना है उन डब्बियों में खाना डालती हूँ, और बाबा जी को कहती हूँ स्वीकार कर लो, और फिर जब मैं फारग होती हूँ फटाफट टिफिन उठाती हूँ और चल पड़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो तुम अपने झूठे गिलास का के अंदर बाबा को भोग लगाती है, झूठा गिलास जो तुम पीती हो दूध का, उस गिलास के अंदर, उस गिलास में बाबा को भोग लगाती है। कहती हाँ बहन क्या करें, देर हो जाती है इसलिए ऐसा करते, परंतु ऐसा नहीं। कौन है वो हमें, कौन खिलाने वाला है, किसकी देन है हमारे पास, है ना? तो जब उसने हमें दाता ने इतना सब कुछ हमें दिया है और हम उसको भूल जाते हैं, अन्न का तो बहुत मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे बनेगी वाणी, है ना। तो अन्न और पानी का बॉडी के ऊपर बहुत, मनोस्थिति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज योग क्यों नहीं लगता, बार बार बच्चों की कंप्लेंट आती है बाबा के पास, बाबा जी योग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता भाई? नहीं तो बाबा है हमारा, सर्वे सर्वा है, हम उसके हैं, वो हमारा है, फिर भी हम याद में बैठते हैं तो बुद्धि भटकती है। क्यों? क्योंकि हम विधि विधान के अनुकूल नहीं चलते। जो बच्चा विधि विधान के अनुकूल चलेगा, मर्यादित जीवन चलेगा, संयम और नियम के अंदर रहेगा, कहते हैं मानव की शोभा है संयम और नियम। संयम में है और नियम मर्यादाओं के अंदर चलता है तो वो और बहुत बहुत श्रेष्ठ और महान बन सकता है। और जिसके पास न संयम है, न नियम है, न मर्यादाएं हैं, जीवन ऐसे एक साधारण प्राणी की तरह है, तो स्थिति भी फिर साधारण ही रहेगी, विशेष नहीं बन सकती, फरिश्ता नहीं बन सकती, देवता नहीं बन सकती। दूसरा, घर के अंदर रहन सहन, किसी के घरों में जाओ तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे सेंटरों में आओ तो अच्छा लगता है ना, कोई कोई सेंटर में भी जाओ तो कहेंगे ना भाई सारी चीजें बड़ी बिखरी पड़ी थी, है ना, बिखरी पड़ी थी, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, वहां मैंने देखा तो रास्ते में झाड़ू पड़ा था, वहां मैंने देखा तो बर्तन पड़े थे, है ना। सेंटर को तो कोट कर लिया हमने, कभी अपने घर को भी कोट किया कि मेरा घर भी सेवा स्थान है, वहां जूते कहाँ पड़े थे, झाड़ू कहाँ पड़ा था, बर्तन कहाँ पड़े थे, कपड़े कहाँ लटके हुए थे, सेवा स्थान के अंदर ये सारी चीजें सुचारू और व्यवस्थित रूप में थी है। कुमार भाइयों बताओ, है, खास करके कुमार लोगों की चीजें ज्यादा बिक्री होती है ना, व्यवस्थित होती है। कहते हैं उत्तम अवस्था से उत्तम व्यवस्था बनती है। अगर हमारी मानसिक स्थिति उत्तम नहीं है, हमारी अवस्था उत्तम नहीं है, तो हम व्यवस्था भी उत्तम नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहला क्या अपने लिए पूछना है हमें, जब हम देवता बन रहे हैं तो हमारी सब चीज बहुत साफ सुथरी क्लीन अच्छी होनी चाहिए। आज बाबा ने क्या बताया पवित्रता के ऊपर, बहुत सारी बातों की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया, कई बच्चे इस बातों के ऊपर नहीं जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, शौच जाओ तो स्नान करो, वस्त्र चेंज करो। कहा पखाने में जाना भी अपवित्रता है, बोला बाबा ने। आज ये बात को भी हम कहां तक फॉलो करते हैं, वो कपड़े चेंज करते हैं या नहीं करते, दिन में अगर जाना पड़े तो क्या करते, वो बात भी अपने आप से अच्छी तरह से पूछनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, नहीं तो लोग फिर हमारे मुंह पर ही थप्पड़ लगाते हैं, बोलती है मैं ब्रह्मा कुमारी, फरिश्ता बनने वाली, देवात्मा बनने वाली, और जीवन तो देखो। इसी प्रकार इस जबान से भी हम बहुत कुछ अनुचित बोल भी बोल देते हैं, और कभी कभी जबान के कंजूस भी बहुत बनते हैं, स्वभाव के भी कंजूस बहुत बनते हैं, है ना। तो भगवान कहता है जबान के भी धनी बनो, स्वभाव के भी धनी बनो, संस्कारों के भी धनी बनो। आज ब्रह्मा बाबा हमें क्यों कहता था, थोड़ा सोचे हम, उनमें सबसे बड़ा गुण था उदारता, उदारता, उदारचित थे वो, उनकी उदारता को देखकर भगवान भी खुश हो गया, है ना। वो उदारचित थे, जो काम करेंगे अपने अपने बच्चों के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए करेंगे, समस्त विश्व के लिए करेंगे। परंतु आज हर एक अपने आप से पूछे, हम कितने कंजूस हैं, ने? कंजूस है कि कुछ अपने लिए करना सो करना है। किसी ने मेरे को बताया कि आज के मानव की मनोवृत्ति इस तरह की हो गई है, संस्कार इस तरह का हो गया है। किसी ने बताया कि दीदी देखो, पहले गांव की कोई भी बहन होती थी उसको हम अपनी बहन समझते थे, गांव का कोई भी परिवार का मेंबर होता था उसको अपना मेंबर समझते थे। परंतु फिर उसके बाद वो समय आ गया कि जब जो अपने बाल बच्चे हैं अपनी बहन है उसी को बहन समझते, अब वो समय आ गया उनको भी भूल करके अपने आप को ही अपना आप समझते और कुछ नहीं समझते, मैं ही मैं हूं, है ना। तो ये कलयुगी प्रवाह इतना फैल गया है, परंतु उसकी आंच हमारे तक तो नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि हम बोलते हैं समस्त विश्व मेरा परिवार है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं या करते भी हैं। कहते हैं विघ्न विनाशक बनो, विघ्न विनाशक वही बन सकता है जिसकी कथनी और करनी एक समान होगी, कथनी एक करनी दूसरी, वो विश्व विघ्न विनाशक नहीं बन सकता, अलौकिक जीवन नहीं जी सकता। तो अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन अलौकिक हो, कहते हैं हमारे तीन बाप हैं, है एक बाप ने चित्र दिया, दूसरे ने चरित्र दिया, अलौकिकता दी, तीसरा कहता है विचित्र बन जाओ, है ना, कहता है। तो अब हमें क्या, हमें तीनों को सामने रखकर और उसमें भी वर्तमान, वर्तमान क्या कहता है, वर्तमान कहता है अलौकिक बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, संपन्न बन जाओ, दिव्य गुणों की मूरत बन जाओ और अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संभालो, सशक्त बन जाओ। पर कैसे बनेंगे हम, जब तक हमारा मनन चिंतन उसी के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वैसे व्यक्ति मनन चिंतन तो करता ही रहता है ना, पर कई व्यर्थ की बातों का मनन चिंतन करता है जिससे कोई जीवन में शक्ति नहीं आती है, मनोबल नहीं बढ़ता। परंतु अगर ज्ञान का मनन चिंतन करे, धारणाओं का मनन चिंतन करे, अपने स्वतः प्रदान एक तस्वीर बना करके उसका मनन चिंतन करे, अभी तो बड़े भी देखा जाए तो कोई ऊपर देखने वाला नहीं है। नहीं तो आपको पता है जब हम लोग चले थे, वो भाई को भी शायद याद होगा, तो बाबा क्या करता था, बाबा हम लोगों के दो दो फोटो निकलवाता था, एक तपस्या में बैठे हुए का फोटो, एक देवताई पोशाक पहना करके उसकी फोटो निकालता था, हैं? और कहता था ये दोनों फोटो अपने पास रखो और अपने आप से पूछो, किसी का मेल की ड्रेस पहना के, किसी को फीमेल की ड्रेस पहनाकर वो फोटो निकालता, जैसे जैसे जिसके संस्कार देखता था उसके मुताबिक उसकी फोटो निकाल के भेजता था। फिर किसी ने कोई गलत काम हो ही जाता तो कहता था अब इसका काला मुंह करके इसके पास वो फोटो भेज दो। मतलब फोटो निकालने का बाबा का अभिप्राय क्या था, सदा हमारे अंदर ये उमंग और उत्साह बना रहे, हमारी आंतरिक हिम्मत बनी रहे कि हमको वो बनना है। योगी का तपस्या का भी चित्र, क्योंकि तपस्या एक फाउंडेशन है, आधारशिला है, त्याग और तप आधारशिला है। अगर त्याग और तप नहीं है तो वैराग वृत्ति हो ही नहीं सकती, उपराम हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ वैराग बीज है, त्याग और तप उसका फल है। अगर वो बीज हमारे अंदर नहीं अभी तक आया, दुनिया से विरक्त नहीं हुए हम, तो विदेही भी नहीं बन सकते, विदेही नहीं बन सकते तो जीवन मुक्त नहीं बन सकते। ये फार्मूला है। अगर हमने उस फार्मूले को अपनाया ही नहीं, है ना, वैरागी बने ही नहीं, राग द्वेष हमारे जीवन के अंदर है, तो जहां राग है वहां द्वेष जरूर होगा, है ना, वहां आसक्ति जरूर होगी, और जहां आसक्ति है वहां गिरावट जरूर होगी, वहां विकर्म जरूर होंगे, विकार जरूर आएंगे। तो इसलिए ना राग रहे ना द्वेष रहे तो क्या रहे? वैराग किस चीज का? वैराग का मतलब क्या है? वैराग का असली मतलब अगर निकाला जाए, वैर जमा आग, पुरुषार्थी के जीवन में जिन चीजों से आग लगती है, वासनाएं उत्पन्न होती है, शीतलता, इंद्रियों की शीतलता खत्म होती है, मन की शीतलता खत्म होती है, उससे वैर होना, दुश्मनी होना, ये है वैराग का मतलब। सुना? परंतु वो है अंग अंग शीतल है। कहते ना योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। मैं इतने परमार्थ को पहुंची हुई योगी हूं, मेरा अंग अंग शीतल है। मेरे परिवार वाले कहते हैं कि ये तो मेरे घर में एक मूर्ति रहती है, दिव्य मूर्ति रहती है, एक गाइड मास्टर रहता है, इसको देखते ही, सवेरे देखते ही, इसको जब देखते हैं, इसको नमस्कार करते हैं, तो हमारे को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है कि हम भी ऐसा जीवन व्यतीत करें। ऐसा होना चाहिए हम लोगों को। या हमारे को देखते कहेंगे हाय हाय किसका मुंह देख लिया, ना सारा दिन खराब हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चढ़ता सूरज, मेरा जीवन एक चढ़ते सूरज के समान होना चाहिए। पर वो कब होगा? जब मेरे निश्चय की नींव बहुत मजबूत होगी, मेरा लक्ष्य मेरे नजरों के सामने होगा, घर जाना मुझे याद होगा, वापसी यात्रा पर हूं ये याद होगा, और मुझे संपन्न होके जाना है, मुझे कर्म बंधन से मुक्त होके जाना है, विकर्मों से मुक्त होके जाना है। तो क्या इतनी लगन की अगन मेरे अंदर पैदा है? भगवान से प्रेम की लगन की अगन इतनी पैदा है मेरे अंदर, जो सब इधर उधर की हवाएं सब कुछ भस्म हो जाती है उसके अंदर? है नहीं? तो सबसे पहले अपना एक चित्र बनाइए अपने आप का, अपने पास वो चित्र रखिए कि मुझे क्या बनना है, मेरी दौर कहाँ तक है, त्रेता युग तक है, द्वापर युग तक है, या सतयुग तक है, या सतयुग के महाराजा तक है, कहाँ तक मेरी दौर है? अगर मुझे सर्वोत्तम बनना है तो अपनी स्थिति को सर्वोत्तम बनाना ही होगा। एक हंसी की बात याद आती है कि अकबर बादशाह को एक दिन ऐसे ही संकल्प आया कि मुझे एक ऐसा मुर्गे का चित्र चाहिए जो बांग देता हुआ लोगों को उठाए। अब वो चित्र चैतन्य मुर्गा तो गया, अब वो कहता है ऐसा चित्र तैयार करके दो जिससे चैतन्यता नजर आए। उसने वीरबल को बुला करके कहा मुझे ऐसा चित्र बना के दो। अब वीरबल बेचारा सोचने लगा कि ऐसा चित्र कैसे बन सकता है, तो उसने बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया, कहा जी ये नहीं बन सकता। फिर बहुत एडवर्टाइजमेंट करने के बाद एक आर्टिस्ट बुढ़ा सुटरा एक आर्टिस्ट आया, उसने कहा मैं बना सकता हूं। कहा तू कुबरा सुबरा लगता ऐसे ही जैसे कुछ नहीं जानता, तो कहा मैं बना सकता हूं वो चित्र? तो कहा कैसे? कहा मुझे सिर्फ 6 मास की मोहलत चाहिए। और 6 मास के लिए भोजन भी चाहिए और 6 मास के लिए जंगल में एक स्थान चाहिए जहां मुर्गे रहते हो। अब वो सारा दिन छुट्टी मिल गई उसको, सब कुछ मिल गया और वो जंगल में रहने लगा, हर वक्त मुर्गों की हरकतें देखता रहता, मुर्गे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, वो सारा दिन उनकी हरकतें देखते देखते उसको अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाना भी भूल गया, है ना, खाना पीना भी भूलता जा रहा था। कैसे लगता होगा जब दाढ़ी वाड़ी नहीं बनती होगी तो उसको कैसे देखने में आएगा, उसको मुर्गे जैसा ही वो बनता गया, है ना। तो एक दिन बीरबल को ख्याल आया कि वो जो आर्टिस्ट था वो जाओ जाकर के देखो जंगल में क्या कर रहा है। तो कुछ लोग देखने गए तो वो तो उसका वेश उसका रूप देख करके कहने लगे ये तो पूरा मुर्गा ही बन गया है। तो वो आके कहते हैं कि भाई उसकी हालत तो बहुत अजीबो करीब हो गई है। तो फिर क्या हुआ कि जिस दिन डेट था फाइनल उस दिन उसको बुलाया गया और वो खाली हाथ चलाया का चित्र का अभी 10-15 मिनट के अंदर आपको चित्र बना के देता हूं, क्योंकि उसने सारा डेप्थ तक जा करके सारी हरकतें उसकी वॉच कर ली थी, है ना। और फिर उसने डायग्राम बनाया और 5-10 मिनट के अंदर वो चित्र बना करके तैयार कर दिया। जब चित्र को रखा गया सामने तो उसे लगने लगा कि वो सवेरे सवेरे उठकर एक छत पर बैठा है और बांग दे रहा है, लोगों को उठा रहा है। वो चित्र के अंदर उसने चेतनता भर दिया। और भगवान आज क्या कहता है हम लोगों को, क्या कहता है थोड़ा याद करो, क्या कहता है, है? हाँ? मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले तुम हो, क्योंकि भगवान तो अपना गुप्त रीति से कार्य कर रहा है, बहुत सारा कार्य उसने अपना समाप्त कर लिया है, है ना। और उसने हम लोगों को आगे रखा है कि मेरे को, आज वो कहता है मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले भी तुम हो। कल हम कहते थे आप हमारे को प्रत्यक्ष करेंगे बाबा, परंतु बाबा आज कहता है मेरी प्रत्यक्षता तुम्हारे द्वारा। अब भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले हम बच्चे, शूरवीर बच्चे, हाँ, और हमारी मनोस्थिति क्या है, कितनी अलौकिकता है, कितनी दिव्यता है, कितनी रूहानियत है, कितनी सत्यता प्रदर्शन होती है, कितना साकाश देते हैं, सूर्य के समान साकाश देने वाली मूर्तियां हैं हम। कितनी हम इस संसार की नैया को विषय सागर से पार उतारने वाले हैं, सच्ची नाविक है हम, है। परंतु आज सच पूछो तो हम बोल नहीं सकते, मैं हमें कई बार ऐसा लगता है बैक टू दी पैविलियन पहुंच रहे, जहां से चले थे वहीं पहुंचते जा रहे हैं। नहीं तो हमारे पुराने पुराने भाई बहनों के अंदर वो चमक, वो धमक, वो फलक, वो रौनक, वो दिव्यता होनी चाहिए। इसमें भी हमें निराश नहीं होना ना? पहले हम बहुत बोला करते थे जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। महात्मा गांधी तो ये बहुत कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो कोई बात नहीं है, निराश होने की भी जरूरत नहीं है। फिर से अपने आप का है, हम अपनी उमंग को, अपने उत्साह को, अपनी हिम्मत को, अपनी सच्ची लगन को जागृत कर ले, है ना, और एक लक्ष्य अपना बना ले कि मुझे अपने गोल पर पहुंचना है और उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपनी मास्टरी खुद करनी है। किसी को नहीं देखो, इधर उधर नहीं देखो, स्ट्रेट देखो, है ना। स्ट्रेट देखेंगे, लक्ष्य के अनुकूल अपने आप को चलाएंगे। अगर साइड सीन में चले गए तो कहां ना कहां कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी। मुझे साइड सीन में नहीं खोना, मुझे इधर उधर नहीं देखना, मुझे क्या करना है, सी फादर एंड मदर। आज कल मम्मा का दिन, आपको मालूम है मम्मा को गए हुए कितने वर्ष हो गए, 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा था, कितने साल हो गए, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे कई, है ना। पर आज भी उनकी याद हम सबके हृदय के अंदर ताजा है। क्यों ताजा है, क्यों ताजा है, सोरा सोचिए। बाबा को भी मामा 1965 में गई, बाबा 1979 में 69 में गए, 4 साल के बाद। परंतु आज भी बाबा इस संस्था को चला रहे, ये मैं बता देती हूँ। वो बाबा और मामा ही इसको चला रहे। कैसे चला रहे, उन्होंने ऐसे शूरवीर बच्चे तैयार किए, उनकी इतनी गहरे तरीके से पालना की, उनको ज्ञान योग से इतना रिष्ट-पुष्ट बना दिया। जब तक वो बच्चे हैं तब तक ये संस्था भरपूर रहेगी, बढ़ती जाएगी। और आज भी इस संस्था को सिर्फ हम ही लोग थोड़ी चलाने वाले, हमसे आगे भी बहुत आप सब आने वाले, है ना। वो चले गए तो हम भी चले जाएंगे, है ना, चलाना तो है ना इसको। परंतु हम में से कोई इस तरह से त्यागी, तपस्वी, उपराम वृत्ति वाले, ज्ञान योग की स्टडी में प्रवीण, लवलीन रहने वाले बच्चे चाहिए, जिनका जीवन खुली किताब हो। एक एक पन्ना खोलो तो कुछ पढ़ने को मिले, कुछ सुनने को मिले, कुछ देखने को मिले, कुछ जानने को मिले, तब तो है। नहीं तो घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, संसार छोड़ा, फिर भी अपने आप को कुछ नहीं बनाया तो क्या किया, बोलो कुमार भाइयों, क्या किया, हाँ। तो इसलिए कोई बात नहीं, बीती को विसार दो, बीत गया, बिंदी लगा दो। अब फिर मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, ये भी सिर्फ उदाहरण कर लो, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं किस लिए हूं। ये तीन शब्द अगर हमारी बुद्धि के अंदर रहते हैं, मैं कौन, मैं किसका और किस लिए, अगर ये तीन शब्द भी हमारी बुद्धि के अंदर रहे तो नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई बातें हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगी। परंतु जब हम साइड सीन में खो जाते हैं तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि से निकलने लग जाती हैं और हम इधर उधर देखने लगते हैं, ये भी तो ऐसा, ये भी तो ऐसा, ये भी तो ऐसा, फिर उंगलियों में गिनती करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सदा अपना लक्ष्य अपने सामने रखो, इधर साइड सीन में नहीं खोना, और अपने ज्ञान योग से फाउंडेशन को मजबूत रखो। स्टडी बहुत जरूरी है। एक सन्यासन अचानक हरिनगर सेंटर में आई, अब वो आते ही हमारे कमरों के अंदर जहां हमारी बहनें रहती है वहां चली गई। मुझे बड़ा ख्याल आने लगा, अरे तुम यहां आई हो, हमारे पास बैठो ना, हमारे घर के अंदर क्या करने गई, समझा। तो जब वो घर का चक्कर लगा के आई तो मैंने पूछा, बहन जी आप वहां क्या करने गए थे, तो कहा कुछ देखने गई थी। मैंने कहा क्या देखने गई थी, कहते हैं कि यूं ही जीवन है या कुछ जीवन को बनाने का कोई इनके पीछे कुछ है भी, कुछ ये लोग पढ़ते लिखते भी हैं, कुछ स्टडी भी करते हैं, क्या सिर्फ सुंदर सुंदर चारपाइयां बिछी हैं उस पर सिर्फ जाके विश्राम करते हैं। तो उसने क्या देखा, सबके बिस्तर पर के पास ही छोटी छोटी अलमारियां हैं, उधर कुछ कुछ किताबें बड़ी हुई हैं। किसी की विषय में एक्सरसाइज बुक है, किसी के कुछ किताब है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, तो कहा देख के आई, अच्छा लगा, सुना। ऐसे ही मेरा कहने का भाव ये है, मनन चिंतन स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है अगर जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है तो, सशक्त बनाना है तो, और अपने अंदर समृद्धियां भी इसी तरह की जागृत करनी है कि मैं इष्ट हूं, मैं पूज्य हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। जब इस तरह की ऊंची ऊंची समृद्धियां हमारे अंदर रहेंगी तो हमारी मनोस्थिति अपने आप ऊंची रहेगी, हमारा रहन सहन खान पान व्यवहार अपने आप ऊंचा होगा, उसमें अपने आप में अलौकिकता आ जाएगी। बंधु, अगर हमारी समृद्धियों के अंदर, हमारी कॉन्शियस के अंदर ऊंच नहीं है, हमारी समृद्धियां ऊंच नहीं है, हमारी कॉन्शियस के अंदर वो ऊंच भावनाएं नहीं है, तो क्या होगा? फिर हमारा सब कुछ रहन सहन खान पान जैसे दुनिया के लोग बोलते हैं वैसे हम बोलेंगे, वैसे हम चलेंगे, वैसे हमारा व्यवहार होगा, है ना। परंतु नहीं, अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने आप को बहुत विघ्न विनाशक समझ लिया या सशक्त मास्टर सर्वशक्तिमान समझ लिया, उसी रीति से मैं चलूं, उसी रीति से मेरे पांव चले, लोगों को प्रदर्शन हो कि ये तो अपने आप को वाकई मास्टर वो तो अभिमान है ना? एक व्यक्ति था वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, ब्रह्म कुमार था, वो सुपीरियर समझता था, सुपीरियर है नहीं, परंतु उसकी चाल ऐसी, उसका बोल ऐसा, उसका कर्म ऐसा, और फिर जब उसके बाद की लाइफ देखी, प्रीवियस लाइफ देखी, वर्तमान देखी, भविष्य में उसके संस्कार देखे, तो लोग उसको थप्पड़ मारते थे, तू बना किस चाल में चलता है। तो हमें वो अभिमान भी नहीं होना चाहिए, हाँ अपना मान अपनी शान हमें खुद बनानी है। हम सम्मान में रहेंगे तो मान और शान अपने आप मिलेगा, अगर हम सम्मान के अंदर नहीं है, अभिमान के अंदर है, तो अभिमान का सिर नीचा होता है, क्योंकि अभिमान में रहने वाला अपना भी अभी दूसरों का अपमान जरूर करता है, वो तो बाबा का भी अपमान करने में उसको कोई देरी नहीं लगती है ना। परंतु जो सम्मान में रहेगा वो कभी अभिमान नहीं करेगा। तो सम्मान में रहना तो रोज बाबा सिखाता है कि सम्मान में रहो, सम्मान में रहो, और जितना सम्मान में रहेंगे उतना सम्मान मिलेगा, सत्कार मिलेगा। अगर हम अपने सम्मान में भी नहीं रहते हैं, सारा दिन इंटरफेरेंस, हर बात में इंटरफेरेंस, हर बात में इंटरफेरेंस करते हैं, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं होता। जब हमसे कोई पूछे तब बोले, जब हमसे कोई पूछे तब किसी के साथ व्यवहार करे, नहीं तो ऐसे ही अपने आप बिना बुलाए चल पड़ो, क्यों? परंतु बिना बुलाए चल पड़ो, सेवा के लिए तो बिना बुलाए जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। पर उसमें भी बाबा कहते हैं स्थान समय व्यक्ति वातावरण देख के बात करो। ना स्थान देखा, ना समय देखा, ना व्यक्ति देखा, ना वातावरण देखा, और चल पड़े ज्ञान सुनाने। वो कहेंगे जा जा तू अपना ज्ञान खुद रख अपने पास, रतन कहाँ देने हैं, रतन लेने वाला भी चाहिए ना। आप और हम सबका जीवन प्रभु उपहार के रूप में मिला हुआ है, उसकी कीमत निकालना हमारा काम है, कोई और नहीं निकालेगा। जैसे आप कोई चीज बाजार से खरीद करने जाते हैं तो उस चीज का मूल्य अदा करते हैं, करते हैं, ऐसे ही प्रभु उपहार के रूप में हमें जो ये ब्राह्मण जीवन मिला है, जो सबसे उत्तम जीवन है, उसकी महानता निकालना, उसको सत्यता प्रेम एकता दया करुणा अहिंसा परमो धर्म को अपनाना मूल्य निष्ठ बनाना हमारा काम, उसकी वैल्यू हमें खुद निकालनी, वैल्यूएबल हीरा बनना है। तो हीरा ऐसे नहीं बनता, उसको तराशा जाता है। तो विघ्न तो आ सकते तराशने के लिए, परंतु मेरा अगर निश्चय की नींव, आत्मविश्वास परमात्म विश्वास की नींव मजबूत है, गहरी है, तो कोई संसार की हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं जो आपको नीचा दिखा सके, है ना। तो अपनी वैल्यू अपने कर्मों से, अपने संस्कारों को दिव्य बनाने से ही बनती है। कोई किसी को वैल्यू नहीं देता। हमारे जीवन का तो ये लंबा चौड़ा 60 वर्ष का ये अनुभव है, कोई वैल्यू नहीं देता, भगवान भी वैल्यू नहीं देता। वो भी कहता है पहले सर्टिफिकेट लेके आ, है ना। वो कहानी है ना सुनी हुई, बड़ा खुश रहता था एक व्यक्ति। तो किसी ने पूछा, भाई तू बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है, आखिर तेरे को कुछ खुशी की देन कहां से मिली। तो कहता है, खुश ऐसे नहीं रहता हूं, खुश रहने के लिए सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। तो उसने कहा, अच्छा तो वो सर्टिफिकेट कहां मिलते हैं। तो उसने कहा, चल मैं तेरे को ले चलता हूं। तो वहां 4-5 कोठरियां लगी हुई थी, बनी हुई थी, और एक ये लिखा था, अगर सर्टिफिकेट लेना है तो आंखें निकलवानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना है तो बाएं कटवानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना है तो टांगे कटवानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना है तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। कहता, और भी सब कुछ कर सकता हूं पर गर्दन नहीं कटवाऊंगा ना। परंतु गर्दन माना ईगो जो चलते फिरते हमें पैदा हो जाता है कि मैं भी कुछ हूं, कला का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपनी शिक्षा का अभिमान, अपना प्रशासन का अभिमान, सारे अभिमान तोड़ दिए, फिर चलते चलते ये भी अभिमान हम सबके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो जब तक ये अभिमानों के भी गर्दन नहीं कटवाओगे, तब तक आप सर्वोत्तम ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं बन सकते, जीवन मुक्त स्थिति को नहीं पा सकते। तो मेरी यही आप सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, क्या कि अब कदमों को आगे बढ़ाओ, है ना। वहीं खड़े नहीं रहो। कहते हैं, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक कदम आप चलो, एक कदम बाबा आपके आगे आएगा। अभी आप ठहरे हुए हैं तो बाबा भी ठहर गया है, कहता ठहरे रहो, है ना। अब एक कदम आप आगे आओ, हिम्मत उल्लास उमंग अपने अंदर पैदा करो, एक कदम आप चलो, एक कदम बाबा चलेगा आपके, फिर बाबा के कदमों में अपने कदम मिलाओ तो मंजिल, जीवन मुक्ति की मंजिल दूर नहीं, वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी ने सरल युक्तियां सिखाई, सरल भाषा और सरल रीति से हम सबको ये युक्तियां सिखाई कि लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें। और एक कदम हमारा तो कितने कदम बाबा के,
हजार
कदम बाबा के हैं। इसे समझ में इस भाव को आ गया होगा। तो दीदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सबके बीच में आए और हमें ज्ञान रत्नों से लाभान्वित किया है। सभी एक हाथ की ताली से धन्यवाद,
हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ। आपने हमें बुलाया है, हमने आपकी सेवा की, ये भी हमारा सौभाग्य है। नहीं, अच्छा
अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।